آئے کہ بینی الاقوامی سازش ہو رہی ہے، کیونکہ دونوں طرف سے جو ہے سو فوجیں سرحدوں پہ جمع ہو رہی ہیں، اور پاکستان نے جو ہے سو افغانستان بھارت کے جواب میں افغانستان سے جو ہے سو اپنی 1,00,000 فوج موو کر رہا ہے، بلکہ سنے آ رہا ہے، کیونکہ ایسا بھی کچھ ایسی حالات پیدا کرنا ہے جس میں بی جے پی خاص طور پر شریک ہے، حیدرآباد دکن کے ریاست میں تقریباً 6 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا ہے، زندہ
اچھا یہ
مدد کر کے زندہ جلا گیا ہے، اور کئی جو ہے سو ہلاک ہوئے اور کئیوں کو لوٹا مارا گیا پورے گاؤں کو۔
یہ کب کی بات ہے؟
گزشتہ مہینے کی بات ہے، سارے اخبارات دھرے پڑے ہیں۔
جی جی،
یہ جو ابھی جو آندھر پردیش میں ہوئی گھٹنا،
جی ہاں وہی حیدرآباد دکن سے 200 میل دور ہوئی گھٹنا، وہ اس میں جو ہے بہت ہی، اور اب تک ٹینشن ہے، اس میں پولیس شریک تھی، ایم ایل اے شریک تھے، اور وہاں کے پورے بجرنگ دل کے شریک تھے، اور جتنے فساد ہوئے اس علاقے میں اطراف میں اس سب میں بجرنگ دل شریک تھا، کیونکہ جس وقت وہ بم لگا کے بھاگ رہے تھے مسجد میں نماز کا، تو اس وقت وہ اپنی کی داڑھی اور سر کے وک جو ہے گر جانے سے پتا چلا، مگر پولیس انجان بنی رہی ہے۔ یہ سب کچھ ایسی سازشیں ہو رہی ہے، یا تو پاکستان کو اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر کچھ اور بات ہے۔
اچھا جی، شکریہ خان صاحب۔ امریش جی بتاؤ کہ یہ جو اپیئرنس آپ نے بھی دیکھی ہوگی ٹیلی ویژن پر، ان کی تصویریں دیکھی ہیں، میں نے جو محسوس کیا ہے وہ یہ کہ جو میں نے دیکھا کہ چاہے آپ کچھ بھی کہنے، کچھ ایسی ان کے چہروں کے خطوط اینتھروپالوجیکلی وہ ایسے ہیں کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پہاڑی علاقے اور ہمالیاز وغیرہ کی طرف کے کوئی لوگ ہوں، اور لینگویج بھی جب وہ ایک کی آواز جب سنوائی تو اس نے جو کہا کہ دکن مجاہدین، تو ایک تو وہ غلط تھا اس لیے کہ نہ اس کا لہجہ حیدرآباد کا تھا اور نہ اس کا بولنے کا انداز، لیکن ہر جملے کے آخر میں وہ اس کو اس طرح ختم کر رہا تھا کہ ہم دیکھے گا اور ہم کرے گا۔ تو جو میں جو ان لوگوں کے لیے جو نارتھ سائڈ میں رہتے ہیں پاکستان کے یا ہندوستان کے اس طرف رہتے ہیں، وہ ان کا مجھے لگ نہیں رہا تھا۔ تو کیا آپ کے کیا اس پہ ٹیک ہے، اس آئیڈینٹی پہ ان لوگوں کی؟
جی وہ بڑا ہی پیچیدہ سوال ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی کلیئر کٹ وہ آیا ہی نہیں ہے۔ مطلب ابھی انویسٹیگیٹو ایجنسیز یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس، کسی کے پاس موریشین پاسپورٹ ہے، کسی کے پاس یو کے کا پاسپورٹ ہے، کسی کے پاس پتہ نہیں، مطلب مختلف دیشوں، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کئی دیشوں کے لوگ تھے اس میں۔
جی،
اور اس میں اگر پاکستان میں جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ ہوئی تھی تب بھی، انفیکٹ ابھی تک انڈین گورنمنٹ نے آفیشلی یہ نہیں کہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ انوالو تھی، ابھی تک وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ سوائل یوز ہوا تھا، لیکن پاکستان گورنمنٹ کے کنٹرول میں یہ ایلیمنٹس تھے کہ نہیں، یہ ابھی آفیشل سٹینڈ۔ میڈیا کا الگ ہے، میڈیا تو اپنی کہانی یہاں پر پہلے ہی کہنے لگتی، لیکن جو آفیشل گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے وہ بھی ابھی تک یہ نہیں، یہ کہنے کی ابھی پوری طرح سے مطلب صاف طور پہ ایک پاکستان کا انوالومنٹ صاف طور پہ نہیں کہہ پائے سرکار کا انوالومنٹ۔ تو یہ جو آئیڈینٹی کا سوال ہے اس میں تو دیکھیے، ایک جو پوری رپورٹ آ رہی ہے کہ ایک کچھ لیٹینوس ٹائپ کے کچھ مطلب چکانو فیچرز اور کچھ اس طریقے کے لوگ جو ہیں،
یہ جو یہ
لوگ تھے۔
اچھا، آپ کے یہاں جو گورکھے جو ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ ایسے فیچرز؟ ہیلو،
نہیں، گورکھوں میں کیا ہوتا ہے کہ دو ہیں، گورکھے زیادہ تر گورے ہوتے ہیں، بہت
اچھا
گورے ہوتے ہیں، اور جو سانولے ہیں وہ مدھیسیا ہوتے ہیں جو نیپال کی ترائی میں رہتے ہیں۔
اچھا،
وہ لوگ لیکن گورکھے نہیں ہیں، وہ لوگ ان کی نیشنلٹی وہی ہے جو یو پی والوں کی ہے، کیونکہ وہ گورکھپور یو پی کا بارڈر لگتا ہے نیپال سے، تو وہ مدھیسیا ہیں۔
اچھا،
لیکن ان کی لینگویج وغیرہ جو ہے وہ کافی نیپالی کی طرح ہے، مطلب اٹس اے مکسچر آف بھوجپوری اینڈ نیپالی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اس سمے کوئی بھی چیز۔
امریش، ایک اور کالر لائن پہ۔ جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جی بولیے۔
جی میں یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارے گیم یہ تو نہیں ہے کہ جیسا کرکرے وغیرہ یہ لوگ جو ہے بی جے پی کے پردے کھول رہے تھے، وہ ان کے ملٹری کے آدمی بھی کچھ انوالو تھے جو سارے بم وم پھوٹے تھے انڈیا میں۔
جی بول چکے ہیں، ابھی آپ ساجد صاحب بول رہے ہیں؟
जी सारा ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं ये
अभी
मान के निकले।
अमरेश भाई ये बात कर चुके हैं आप, मेरा देर में रेडियो खोला आपने, अमरेश भाई इस सिलसिले में बात कर चुके हैं, बता चुके हैं।
तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो वही वही वो, हम लोग वही सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसी लिए इनको एलिमिनेट किया गया।
हाँ वही पूरा सारा ड्रामा वही दिख रहा।
जी शुक्रिया।
इंडियन आर्मी इतनी कमजोर तो नहीं है, एयरफोर्स इतनी कमजोर नहीं है जो है शिप में आके जो है बैठ के जो है सारा सामान लेके आए। ये लोग आज से थोड़े दिन पहले जो है एडेंस में वो अपने सोमाली के शिप को जो है जाके अपना जो है छुड़ा के लेके आए। समझने की बात ही नहीं है ये तो।
जी
जी ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मैं इसमें जरूर एक बात ऐड करूंगा कि ये ऐसा लग रहा है कि पहले से प्लानिंग थी कि इन लोगों को अंदर आने दिया जाए, और ये प्लानिंग बिना गुजरात गवर्नमेंट के और बिना महाराष्ट्र गवर्नमेंट के रजामंदी की ये नहीं हो सकता है। और गुजरात में और गुजरात का चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है जो कि सबसे बड़ा आरएसएस बीजेपी का आदमी है, और महाराष्ट्र में भी हुकूमत कांग्रेस की है लेकिन रेहन जो है वो हिंदुत्व का है।
शुक्रिया भाई साजिद।
वो कहां थे नहीं, राज ठाकरे बड़ी बड़ी बातें करते उनकी सेना है फलाना है, वो कहां चुड़िया पहन के बैठ गए थे?
नहीं वो तो खैर वो उस मुद्दे को तो मतलब हमारे ख्याल वो इतना छिछोरा मुद्दा है, वो छिछोरा आदमी है।
नहीं
बारे में क्या
बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना वो तो।
साजिद भाई एक और कॉलर लाइन पे उनको मैं लेना चाह रहा हूँ प्लीज। जी जी ये कौन है? जी सलाम अलैकुम।
जी सलाम अलैकुम।
जी
अमरीश भाई से ये पूछना है।
जी पूछिए।
क्या हिंदुस्तानी मीडिया जो गिरफ्तार हुए अजमल आमिर उनके लिए कह रहा है कि उनका ताल्लुक फरीदकोट पाकिस्तान से है, तो जहां तक मेरी नाकिस मालूमात है जोग्राफिया की, पाकिस्तान में शायद फरीदकोट नाम का कोई शहर गालिबन नहीं है, पंजाब में जरूर है, तो क्या इस पे इसकी कोई तस्दीक?
मतलब आप कह रहे हैं मशरकी पंजाब में?
जी हाँ मशरकी पंजाब में।
अमरीश भाई
ये देखिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि फरीदकोट जो है एक्चुअली वो जो कि ईस्ट पंजाब है जो कि इंडियन पंजाब है उसका एक शहर है फरीदकोट। अब फरीदकोट का जो अब वो पुराने फरीदकोट का एक हिस्सा पाकिस्तान में जरूर चला गया था, तो वो अब उस डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है वो नाम नहीं लेने के बजाय ये लोग उसको फरीदकोट, क्योंकि फरीदकोट पार्टीशन हुआ था
जी,
और फरीदकोट का जो हिस्सा पाकिस्तान में गया था लेकिन वो जरूर उसका कोई नया नाम होगा
जी,
तो फरीदकोट जो उसको बार बार कह रहे हैं
जी,
वो चीज अभी तक वो भी नहीं समझ में आ रही क्योंकि उसमें मतलब इनको लॉजिकली अगर इन्होंने उससे कन्फेशन लिया है और ये सब लिया है तो उसने अपनी उस पाकिस्तानी इलाके का नाम बताया होगा उसका, जहां तक मुझे इल्म है कि वो इलाका जो है वो उसका नाम कुछ दूसरा है।
अच्छा
ये
अमरीश एक बात बताइए,
नाम नहीं है
अमरीश भाई ये एक कॉलर जिसमें एक और कॉलर है, मैं ये सवाल ले रहा हूँ, उसके बाद दो कॉलर लेता हूँ फिर उसके बाद आपसे मैं पूछूंगा कि अब फाइनली। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद भाई।
जी वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम।
जी बोलिए।
मेरा बहुत छोटा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि जो कुछ तो बहुत अफसोस है लेकिन उसका रिएक्शन जब भी कराची में कल जो परसों जो वाकयात हुए जिसमें 20 लोग मारे गए हैं कराची के अंदर
जी,
और उसका क्या है आप अब उसको पार्टी का रख दिया जाएगा या फिर उसका रिएक्शन दिया जाएगा, उसका रिएक्शन कहा जाएगा या फिर पार्टी का?
मेरा
जो कराची में जो कराची में 20 लोग मारे गए हैं वो इससे रिलेटेड है?
नहीं मेरा ख्याल है कि हारून वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो एक दूसरा मसला है जो हमारे यहाँ लिसानी जो ग्रुप्स हैं ये कुछ वो मसला है, तो उस पर अभी हम गुफ्तगू नहीं कर रहे, अभी हम इस पर कर रहे हैं
फौरन उसके बाद ही रिएक्शन।
हाँ नहीं ये उससे पहले से चल रहा है, ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसे भी, ये जो कराची के मामलात हैं ये भी कुछ अरसे से चल रहे हैं, वो आपको याद होगा कि तालिबानाइजेशन और फलाना और ये वो सारी चीजें, तो ये उसका हिस्सा है। शुक्रिया बहुत थैंक यू। उधर मैं एक कॉलर और ले लूं आखिर में और उसके बाद मैं अमरीश भाई से इसको चाहूंगा कि रैप अप करें। और जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद
जी,
बहुत आप प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, सबसे पहले तो बहुत अफसोस जो कुछ भी हुआ जितने भी लोग उसमें मासूम मारे गए।
अमरीश अमीन हैदर हैं।
आज हैदर साहब हाँ
जी आपसे मुलाकात हुई थी अमरीश साहब यहाँ पे और
जी याद है मुझको जी
बहुत अच्छा
जी,
लगा था। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ इस वक्त कि ये अफसोसनाक वाकया जो है ये हुआ, इसमें एक इत्तला ये भी है कि लोग किश्तियों से आए और उन्होंने इन्वेड कर लिया शहर को, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جی پی ایس تو ہر جگہ موجود ہیں اور ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے انویٹ کیا ان کے پاس لاجسٹک کیسے پیدا ہوا, ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن کیسے پیدا ہوئی, اتنا اسلحہ انہوں نے کیسے موو کیا, اور شہر میں اتنے امپورٹنٹ جو مقامات تھے ان کے اوپر وہ پہنچ کیسے گئے, کیا جی پی ایس ان کے پاس تھا یا ان کو آلریڈی یہ ٹریننگ تھی کہ کس کس جگہ جائیں گے وہ. تو یہ ایک بڑا ایک عجیب و غریب انہوں نے وہاں پہ ایک چیز پیش کی تھی, اور مجھے ذرا سا اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, اگر آپ اس کو کلیئر کر سکیں تو.
نہیں, یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ ایکچولی کیا ہے کہ جو ورژنز آ رہے ہیں یہ بھی کانٹرڈکٹری ورژنز آ رہے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس جی پی ایس تھا, کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ پہلے سے یہاں پر دو تین لوگوں نے اپنے کمرے لے کے رکھے تھے, تو وہ پورا جانچ پڑتال مطلب جانچ پڑتال پورے علاقے کی انہوں نے پہلے سے کر رکھی تھی. لیکن جو لوگ جس طرح سے بھاگ رہے تھے, جیسے مطلب لیوپولڈ کیفے پہ مشین گن فائر کر گئے, تاج کی طرف بھاگے, اور وہ راستہ انہوں نے جو شارٹیسٹ راستہ ہے وہ لیا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے وہ جانتے تھے, جی پی ایس وغیرہ ان کے پاس, ان لوگوں کے پاس جو مار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ سڑک کے تھرو جا رہے تھے, وہ ان کے پاس جی پی ایس تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا. جو گاڑی سے آئے تھے اوبرائے میں جو گھسے وہ گاڑی سے آئے تھے, ان کے پاس جی پی ایس ہو سکتا ہے, ان کے پاس جی پی ایس ہو سکتا ہے, لیکن ان لوگوں کے پاس تو مطلب یہ لوگ تو اس طرح سے مطلب فیملی مطلب جو لوگ آن لوکرز بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اتنے فیملیئر تھے ٹرین سے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو پورا وہ کر کے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوگل میپس ان کے پاس سے ملے ہیں, کچھ لوگ یہ بھی ایک اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں, بٹ جو بھی
میپ لے لیں
یہ لوگ بہت
ہیں. وہ شہر بڑا عجیب و غریب آپ کے لیے ہوتا ہے, بہت اجنبی ہوتا ہے. آپ جی پی ایس بھی اگر آپ کے پاس ہے, اچھا اب جی پی ایس ہونا ایک علیحدہ بات ہے, اور اس شہر کا اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہونا علیحدہ بات ہے کہ اس کی ہر گلی مارکڈ ہے, ہر ہائی وے جو ہے وہ مارک ہے, آپ جب جا رہے ہیں تو بالکل آپ کو گلی سے گلی تک آپ کو گائیڈنس ہو رہی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بامبے اب ماشاءاللہ اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہو گیا ہے کہ وہاں پر لوگ جی پی ایس سے اپنے ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جاتے ہیں؟
نہیں, بامبے اتنا سوفسٹیکیٹڈ تو نہیں ہوا ہے, کیونکہ ہر گلی آپ جی پی ایس سے ٹریک کر لیجئے, کیونکہ ابھی بھی یہاں جی پی ایس وغیرہ بہت ہی زیادہ کم لوگ استعمال کرتے ہیں, اور تو اس لیے نہیں, یہ مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ دیکھیے اب پورا جو کھیل ہے وہ یہ ہے کہ مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ 9:30 بجے سے یہ گھٹنائیں شروع ہو جاتی ہیں, 10:30 بجے مہاراشٹر کا مکھیہ منتری ولاس راؤ دیشمکھ جو کہ کیرل میں ہے اس کو لوگ اطلاع کر دیتے ہیں, 11:00 بجے تک ولاس راؤ دیشمکھ نے گرہ منتری شیوراج پاٹل سے بات بھی کر لی اور این ایس جی کی ریکویسٹ بھی کر لی, وہ الگ بات ہے کہ این ایس جی 7:00 بجے صبح آئی, لیکن اگر 11:00 بجے ولاس راؤ دیشمکھ کو معلوم تھا اور کرکرے کی موت ہوئی ہے 1:40 پہ, اور کرکرے کی پوری اے ٹی ایس کی ٹیم سین پہ پہنچی ہے 1:15 پہ, 11 سے 1 کے بیچ کیا ہو رہا تھا؟ کیونکہ 11 سے 1 کے بیچ لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی, کچھ چند پولیس والے کہیں نظر آ رہے تھے, نہیں تو عام طور پہ لوگ مطلب پیپل وار ایٹ دا مرسی آف دی بلٹس. یہ بالکل سیدھا ہے کہ مہاراشٹر چیف منسٹر کو پتا تھا, لیکن یہ بنا اس کے کلوژن کے کیسے ہو؟ آبویسلی پولیس کو آرڈر نہیں تھے کہ وہ موو ان کرے, اور جب 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 اب یہ کیا ہوا ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا, لیکن اور جیسے ہی پولیس موو کی تو اے ٹی ایس موو کی اور اے ٹی ایس کے لوگ تھڑاک سے صاف ہو گئے. اس کے بعد ممبئی پولیس مطلب جو صبح جب این ایس جی صبح آئی ہے کرکرے کی ڈیتھ کے بعد اور این ایس جی کے آنے کے بیچ میں ممبئی پولیس چرمرا گئی, مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں, پورا یہاں پر کیوس پھیل گیا, پورا اس کا کمانڈ سٹرکچر ممبئی پولیس کا ختم ہو گیا, 14 لوگ اس کے مار دیے گئے, اس کے بعد وہ مطلب پولیس ہی کولیپس کر گئی, اس کا کچھ تھا ہی نہیں. یہ مطلب جو ریالٹی ہے, جب تک این ایس جی کے کمانڈوز نہیں آئے ہیں, آرمی نہیں آئی ہے, پولیس یہاں بکھر گئی تھی پوری طرح سے, مطلب 10 آتنکوادیوں نے 40,000 جو کی پولیس بمبے کی, یہ اس کو اس نے پوری طرح سے اپنگ بنا دیا, یہ پاسبل نہیں ہے جب تک
امریش بھائی
وہ پولیس.
یہ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ ہوم منسٹر نے ریزائن کر دیا, یہ کہاں تک درست ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
नहीं, होम मिनिस्टर ने तो रिजाइन किया है, वो तो आज दिन की खबर है
जी।
और वो एक पूरा जो वो जो एक पॉलिटिकल फॉलआउट है, वो होम मिनिस्टर ही नहीं, वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं एम के नारायणन,
अच्छा उन्होंने भी
उनके भी रिजाइन करने की मतलब एक अटकलें लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी रिजाइन करेगा। सोनिया गांधी ने एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया है कि अपनी गवर्नमेंट को अटैक किया है कि इसने सिर्फ काम नहीं किया ठीक से, और ये पूरा एक मतलब सोनिया गांधी ने इस तरह के सिग्नल्स दिए हैं कि अगर गांधी फैमिली का कोई होता प्राइम मिनिस्टर तो शायद ये घटना इस रूप में नहीं होती। हाँ। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इस पे जो पॉलिटिक्स शेप अप हो रही है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी जब फायरिंग वहां चल रही थी तभी वो कल सुबह पहुंच गया ओबराय होटल पर, उसने वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट को कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया, फिर कांग्रेस ने अपना आदमी भेजा। अच्छा देखिए, ये जो होम मिनिस्टर है शिवराज पाटिल, ही इज अ नोन आरएसएस मैन, मतलब ये इसके बारे में ये है कि जो सेकुलर फोर्सेज हैं, 2004 में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, 5 साल तक हम लोग लगातार कह रहे थे कि शिवराज पाटिल को हटाओ, ये जो है कहीं ना कहीं आरएसएस से मिला हुआ है। अब जाके शिवराज पाटिल को सोनिया गांधी ने हटाया है। अब ये जो चीज है ये पब्लिक को दिखाने के लिए तो ठीक है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक मैसेज है कि भाई ये जो ऑब्वियसली जो हम लोगों को खबर है कि सोनिया गांधी के सामने जो भी इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, हेलो
जी जी बोलिए,
उन्होंने पुख्ता सबूत रखे हैं कि इसमें इस पूरे खेल में 6 इन्वॉल्व है, इसमें मतलब हिंदुस्तान की तरफ से इसमें नरेंद्र मोदी, शिवराज पाटिल, लाल कृष्ण आडवाणी, सुदर्शन जो कि आरएसएस के चीफ हैं, एम के नारायणन और जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं विलासराव देशमुख, इसमें इन लोगों का कहीं ना कहीं एक मिली भगत थी। ये सोनिया के सामने प्रूफ रखे गए हैं और तब उसने शिवराज पाटिल को हटाया, क्योंकि शिवराज पाटिल सोनिया का वैसे बहुत खास आदमी माना जाता है।
अच्छा भाई, एक और कॉलर जी, सलाम अलैकुम। हेलो,
सलाम अलैकुम
जी, कौन बोल
जी? ये एक क्विक सवाल पूछना था
जी, पूछे
कि ये इंडिया इतना आसान क्यों है कि जब कुछ भी हो जाता है तो पहली चीज मनमोहन सिंह पाकिस्तान पे निशानदेही करते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरी चीज, क्या ये होने से एक बहाना मिल गया है कि फिर ये एक नई क्रिमिनल रॉइड शुरू हो जाए इंडिया में?
देखिए, वही इस घटना का सबसे जो पॉजिटिव आउटकम ये रहा है कि क्रिमिनल राइट नहीं करा पाए ये लोग, कम्युनल डिवीजन नहीं हो पाया, क्योंकि नारीमैन हाउस के सामने जो मंजर था वहां तो देखने लायक था कि जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों मिलके वो ललकार रहे थे वर्चुअली आर्मी को और एनएसजी को कि तुमने अगर हिम्मत हो तो तुम लोग आगे बढ़ो, नहीं तो हम स्टॉर्म करने जा रहे हैं नारीमैन हाउस। और नारीमैन हाउस में सही बात है, अगर पब्लिक स्टॉर्म करती तो उसको वहां पर यूजी नहीं, मोसाद का जो रोल है, जो कि मैं जिस पर आना चाह रहा था कि मोसाद वगैरह का जो रोल इसमें है इस पूरे घटनाक्रम में, क्योंकि कभी भी किसी टेररिस्ट अटैक में नारीमैन हाउस या ज्यूज की कोई जगह कभी भी केंद्र में नहीं आई। और ये बात कि वो लोग जिहादी थे और ज्यूज को मारने आए थे, ये बात भी सही साबित नहीं होती, क्योंकि उस बिल्डिंग के फिर सारे लोगों को मार देते, उस बिल्डिंग को उड़ा देते, तो ऐसा भी कुछ नहीं किया उन्होंने, उसमें 3-4 लोग मारे गए हैं तो वो तो सभी जगह मारे गए हैं, तो वो तो क्रॉस फायर में मारे जा सकते हैं।
अच्छा मिस्टर भाई,
ये मैं कह रहा हूँ,
एक बात आपसे
बहुत बड़ी जी,
आपसे एक बात ये भी पूछनी है कि जहां पे अभी वजीर दाखला ने रिजाइन कर दिया, तो क्या ये बात जो कही जा रही है काफी कि वो पानी के रास्ते समंदर के जरिए आए, तो क्या नेवी की तरफ से भी कोई रेजिग्नेशन आने की उम्मीद है?
नेवी की तरफ से रेजिग्नेशन उस तरह से आ भी सकता है, क्योंकि इसमें
गार्ड
क्या है,
कोस्ट गार्ड
अभी मतलब हेड्स आर गोइंग टू रोल, तो इसमें ये तो शुरुआत है, और इसमें नेवी की तरफ से भी आ सकता है कुछ अधिकारियों को, अब जैसे होम सेक्रेटरी को भी शायद रिजाइन करना पड़े, कई लोगों को पूरा एक, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर ये बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई है। मेरा जो असेसमेंट है उसमें ये है कि इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी डेफिनेटली हैच की थी, क्योंकि प्रज्ञा सिंह का मामला जैसे बढ़ रहा था उससे ये साफ हो गया था कि इलेक्शन, आप बताइए 26 तारीख को ही घटना होती है और 27 तारीख को मध्य प्रदेश के चुनाव हैं और उसके बाद दिल्ली के चुनाव हैं 30 तारीख को, बीजेपी सब में डाउन जा रही थी
तो
और इस घटना के बाद वो मध्य प्रदेश में लगता है फिर से पावर में आ जाएगी, दिल्ली में हार रही थी तो जीतेगी नहीं तो लेकिन वहां पर हंग असेंबली आएगी और राजस्थान वगैरह में भी अब क्या पोजीशन होती है देखना पड़ेगा।
अच्छा अमरीश भाई, मैं माफी चाहता हूं वक्त ज्यादा नहीं रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर हम ये समझें कि ये जो टेरर अटैक है ये एक तो सदमा बहुत है सबको और हम सब इसमें शरीक हैं, और अभी तो हमने प्रोग्राम के शुरू में मैंने दुआ भी की सबके लिए और तकलीफ दे सूरत हाल है, लेकिन अब इससे क्या जो अचीवमेंट्स, क्या चीज ये टेररिस्ट ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, जरा एक एक करके हम इस पे बात करें मुख्तसरन। क्या मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, क्या मुसलमान और जो हैं दोबारा हिंदुस्तान में उनको टेररिस्ट के तौर पर और एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर पेंट कर दिया गया है, और फिर हिंदुत्व फोर्सेस जैसे कि आप कह रहे हैं कि उनको एक और स्ट्रांग पॉइंट मिला है कि वो सेकुलर और नॉन सेकुलर जो फैक्शंस हैं इंडियन सोसाइटी के उनके दरमियान गैप को बढ़ा दें, और फिर सस्पेंशन जो है पीस टॉक का भी अभी हमें ये भी पता चल रहा है कि वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, पीस टॉक्स हैं, वो सस्पेंड होने वाली हैं। पाकिस्तान की आर्मी जो वॉर ऑन टेरर पर अमरीका के साथ चल रही थी वो अपनी जो वेस्ट से अब ईस्ट बॉर्डर्स की तरफ शायद उसको ले जाना पड़े, इसलिए कि हिंदुस्तान के जो आउटराइट बयान आ रहे हैं जो गवर्नमेंट के और जो पॉलिटिशियंस के और जो मीडिया के, उससे ये खौफ भी है कि कहीं दोबारा उस सिलसिला न शुरू कर दें। और फिर जो हेमंत करकारे का मसला है, तो आप क्या समझते हैं कि ये 6 अहदाफ मैंने लिखे थे थोड़ी देर पहले जो मुझे समझ में आ रहे थे कि ये गालिबन ये थे, और आप क्या समझते हैं कि ये सही है बात और इसमें कुछ और इजाफा करना चाहेंगे?
नहीं, मैं ये कहता हूं, मैं मतलब मुझको ये कहना है कि इसमें ये बात तो सही है कि हिंदुत्व फोर्सेज ने ये पूरा खेल अपने डोमेस्टिक जो उनके जहां पर उनकी जो डोमेस्टिक क्राइसिस है उससे निकलने के लिए उन लोगों ने ये किया था, और इसमें सही बात है बिना बाहरी मदद के, क्योंकि देखिए ये बात कहीं नहीं है कि अगर मुस्लिम वो लड़के थे भी तब भी मुसाद उनके पीछे नहीं हो सकता है, ये बात आप लोग सब लोग जानते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। अभी यमन में एक ऑर्गेनाइजेशन निकला जिसका जो कि जहादी ऑर्गेनाइजेशन था उसके पीछे मुसाद का हाथ निकला, तो ये तो मुसाद की तो ये एक तरीका है कि वो इस तरह से, तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ जो पूरा ये जो घटना लगती है ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों ने किसी को सुपारी दी और उसको मतलब उन लोगों ने इसको कैरी आउट किया, जिन लोगों ने कैरी आउट किया, और क्योंकि कई जगह इस अजीबोगरीब चीजें सामने आ रही हैं कि जो कुछ होस्टेजेस थे जो बाहर आए वो उन्होंने एक में बताया कि वो लोग हिंदी में बात कर रहे थे टेररिस्ट आपस में और कह रहे थे कि वो पैसा वहां पहुंचा कि नहीं, और एक ने कहा कि अरे ये हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस के पास क्या इतना ज्यादा पैसा है, तो मतलब वो किस पैसे की बात कर रहे थे, क्या कैसी बात कर रहे। दूसरी जो बहुत ही चौंका देने वाली बात है कि जो दो लोग जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मतलब वीटी में जो लोग आए थे और जिनके ऊपर ये है कि इन लोगों ने करकरे को मारा है, वो दोनों लोग मराठी में बात कर रहे थे, क्योंकि ये चीज कन्फर्म की है सीएसटी के एम्प्लॉयज ने कि जब वो आए तो उन्होंने मराठी में बात की।
अच्छा,
अब मराठी वहां और मराठी वो जानने वाले थे, उसके बाद उनके हाथ में हेडबैंड है और वो जो पूजा के बाद बांधा जाता है वो हिंदू घरों में, और ये सारी चीजें जो हैं ये एक बड़ी एक तीसरे एंगल की तरफ वो करती है, जो कि एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है जो ये कह रहा है कि राजकुमार पुरोहित जो सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल था और जिसको करकरे ने अरेस्ट किया था मालेगांव ब्लास्ट में, वो अपनी प्राइवेट आर्मी चला रहा था अभिनव भारती के नाम से, भोसले मिलिट्री एकेडमी के नाम से, और जिसका काम ही था मुस्लिम्स की किलिंग करना। तो ये पुरोहित इसमें ये भी पॉसिबल है कि बाकी इंटरनेशनल एलिमेंट्स और मर्सनरीज के अलावा पुरोहित के भी लड़के इन्वॉल्व हों, क्योंकि करकरे को जो मारा है उसको वो उसमें मतलब पुरोहित ने जिन लड़कों को ट्रेन किया वो तो सब कर करे ये धीरे धीरे उनको पकड़ रहा था, लेकिन वो तो अभी भी लूज थे
और वो पहचानते
तो उन्होंने मतलब ये बहुत पॉसिबल है कि करकरे को उन्होंने मार दिया
और पहचानते होंगे ना, बाहर से आने वाले के लिए करकरे और उसकी टीम के टॉप के छह लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल लगता है।
हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से और आज तक आपको मतलब ये बात पता ही नहीं है कि कैसे, मतलब कि मैंने तो देखा कि टीवी पर भी ये सामने दिख रहा है एकदम से गायब हुआ और एकदम से मर गया। मतलब कोई तो बैकग्राउंड कुछ तो होना चाहिए ना।
अच्छा, एक और बात
बिल्कुल क्लियर है कि उसमें, अच्छा यहाँ तक बात आ रही है कि जो छोटा मतलब बॉम्बे अंडरवर्ल्ड में
छोटा राजा
अभी दाऊद को ये लोग एक्यूज कर रहे थे ये टेलीविजन में। दरअसल दाऊद से ज्यादा असली जो अंडरवर्ल्ड से जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं ये छोटा राजन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है
जी।
और छोटा राजन का इन्वॉल्वमेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि उसके ये जो राज मतलब दो दिनों में करकरे मोस्ट प्रॉब्ली प्रवीण तोगाड़िया का और छोटा राजन का नाम भी लेने वाला था इन मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में।
अच्छा, एक और कॉलर
ये सब जो
जी फरमाइए भाई। हेलो,
मिश्रा साहब से सवाल करना है
जी, पूछिए।
मिश्रा साहब, ये मेरे कमांडर चीफ ऐसा कैसा चले गए जो वो लोग उनके पास फोर्स नहीं थी, पहले तो किसी और को भिजाते, वो सामने चले गए मर गए, ये समझ में नहीं आई स्टोरी।
नहीं, वही तो बता रहे हैं।
वही तो मेरे लिए भी पहली है। मैं उनके कलीग्स जो करकरे के मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे भी पूछा, वो लोग सब पजल रहे, वो लोग इतने शौक में है, मैं क्या उनसे कहूँ। मैंने लेकिन फिर भी पूछा कि भाई ये कैसे हो गया, तो वो लोग कह रहे हैं कि कुछ फोन आए उनको करकरे को कि इस तरह। और सबसे बड़ी बात है कि 11 बजे जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री को पता चल गया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, तो करकरे वगैरह कहीं और थे, उनको 12:30-1 तक बताया, तो 2 घंटे तक पते हैं सब। तो उन्होंने कहा कि करकरे को जब पता चला कि ऐसा हो गया है और 1 बजे उसको कोई बता रहा है, तो बहुत ही तैश में आके वो करकरे निकले थे कि ये लैप्स कैसे हुआ, 2 घंटे बाद हमको पता चला। वो बहुत ही एफिशिएंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने अपने तुरंत टीम कलेक्ट की और वो उसमें वो वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद उसके बाद ये पता चला कि वो कामते को भी किसी का फोन आया था, उनको भी आया था, कोई जान पहचान का ही आदमी था जो तीनों को जानता था, पुलिस अधिकारी था, उसने तीनों को एक ही स्पॉट पर बुलाया और वहीं पर काम हो गया। ये पूरा और मतलब ये जो बात, और आप ये सोचिए कि 40,000 की मुंबई पुलिस है, करकरे कोई भी ऑपरेशन करते, कोई भी, ये मान लिया कि उनके पास वेपन्स नहीं थे, उनके पास पिस्टल्स थी और टेररिस्ट के पास AK-47 था, ये भी मान लें अगर हम, तब भी आप ये बताइए कि कोई भी ऑपरेशन ATS करती है उसमें बिना 200-300 पुलिस वालों के इस तरह का ऑपरेशन कभी नहीं करती है
ये।
उसमें और उसमें कहीं जब ये मारे जाएं ये लोग, उसमें आसपास कहीं पुलिस ही नहीं थी, इनके सिपाही नहीं थे कहीं।
अमरेश भाई तो, आप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इतना वक्त आपने दिया, और मैं समझता हूं कि ये एक दुख और गम ऐसा है कि जिसमें न सिर्फ पूरी हिंदुस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया के इंसान हिंदुस्तानी अवाम के साथ हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हैं। हमें बहुत दुख हुआ है और कोई आंख ऐसी नहीं है कि जो अजगबार ना हो उन बच्चों की, उन औरतों की, उन बूढ़ों की लाशों को देखकर और जख्मियों का सुनकर, क्या मामलात हैं और क्या नहीं है। बाज़ औक़ात ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, ऊपर वाला ही बेहतर जानता है, लेकिन ये जरूर है कि हम उन तमाम चीजों की मजम्मत करते हैं, उन आतंकवादियों की, उन टेररिस्ट की, कि जिन्होंने चाहे वो कोई भी किसी नियत से हो, किसी की तरफ से भी किया हो, ये बहुत ही घनावना जुर्म है और इनको सजा मिलनी चाहिए और इनके चेहरों से पर्दे उठने चाहिए। आप जैसे लोग जो सच्चाई के लिए काम कर रहे हैं, हमें उन पर फख्र है और हम समझते हैं कि आपको भी अब बड़ी एहतियात करनी चाहिए, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, और हम ये चाहेंगे कि आप मोहतात, मैं नहीं कह सकता आपको क्योंकि आप बहुत दिलेर आप हैं और आपसे मेरी बात भी यहां हुई थी, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसे और भी एक दो लोग आए हैं कि जो ऐसे थे और अपनी उन्होंने बहादुरी के रास्ते में कुर्बानी दी, मगर ये कि मैं आपसे चाहूंगा कि आप एहतियात करें।
नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात, और ये एक लंबी लड़ाई है, इसमें हम लोगों को संयम से काम लेते हुए और वो करना, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैं ये जो और यही कह के मैं साइन ऑफ करना चाहता हूं कि करकरे की मौत और इसमें जो बाकी लोग मारे गए वो तो बहुत ही है मतलब दुखदाई, लेकिन मैं कहूँ खास तौर पे करकरे की मौत एक मौत नहीं है, वो एक खून है, वो एक मर्डर है। और ये फैसिस्ट फोर्सेस ने हिंदुस्तान पे ये करकरे को मार के एक नए तरह की वॉर, देखिए एक तो वॉर ऑन टेरर जो आपको टीवी पे दिखाई पड़ी, एक है असली वॉर जो है वो करकरे की डेथ से शुरू होती है। और ये वॉर इसमें फैसिस्ट जो फोर्सेस हैं इंडिया की उनका एक अलायंस है मोसाद और सीआईए और तमाम विदेशी ताकतों के साथ, और इन लोगों ने एक हम लोगों को मैसेज दिया है। मैं इस रेडियो टॉक के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूं कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म वॉर, ऑफ अ लॉन्ग टर्म सिविल वॉर। इफ अमेरिका हैड टू फाइट अ सिविल वॉर टू प्रिजर्व इट्स डेमोक्रेसी एंड देन इंडिया विल ऑल्सो गो थ्रू द सेम प्रोसेस। और ये कहते हुए, ये आश्वासन देते हुए कि ये एक लंबी लड़ाई है, ये एक लंबा युद्ध है जो इन लोगों ने शुरू किया है और इसको हम लोग खत्म करें, ये कहते हुए मैं
बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हम स्टेशन आईडी ब्रेक पे जाएंगे और फिर जैसे इसके बाद वापस आएंगे हम अपने अगले मेहमान और अगली मौजू पर बात करेंगे। मौजू तो यही इसी सिलसिले का है, पाकिस्तान के हवाले से बात होगी, पाकिस्तान की जो हुकूमत है और सियासतदान वो क्या कहते हैं।
बहुत शुक्रिया
जी।